آپ ایس بی ایس اردو کے ساتھ ہیں۔ اس طرح کی اور کہانیاں sbs.com.au/اردو پر سنیے۔
ایس بی ایس اردو ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر۔
اوئے علی پاکی مامدا میں ورد کرا دم دم، ہن ویکھ تجلے نور دے جھوک تیرے شبنم، میں پڑھی نمازاں عشق دی دور ہوے سب غم، تے میں گاواں جگنی تیری، میں گاواں جگنی تیری، میں گاواں جگنی سجنا دی، اللہ بسم اللہ تیری جگنی، ہائے سونیا تیری جگنی، مولا والے آ تیری جگنی۔
معروف فنکار گلوکار سلیم جاوید ہر طرح کی موسیقی سے اپنے شہدائیوں کو مسحور کرتے ہیں۔ وہ آسٹریلیا کے دورے پر آئے ہوئے ہیں، جس کے دوران ہم نے ان سے بات چیت کی ہے، آئیے آپ بھی سنیے۔
اس اردو کی نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سلیم، آپ کا نام میں سمجھ سکتا ہوں کہ دو سے تین نسلیں ایسی ہیں جو آپ کی آواز سے، سر کے ذریعے رشتہ بندھا ہوا ہے، اس سے آپ کی پہچان بنی ہوئی ہے۔ یہاں آسٹریلیا آ کر آپ کو اپنے فین سے مل کے کیا چیز ایسی لگ رہی ہے جو دنیا کے اور جگہوں سے آپ جہاں پرفارم کرنے گئے مختلف لگ رہی ہو آپ کو؟
اچھا، ایک تو سب سے پہلے آسٹریلیا کے لوگوں کا، سڈنی کے لوگوں کا، اور جو ہمارے پروموٹر ہیں رفیق چودھری صاحب، یہ میرے 30-35 سال پرانے دوست بھی ہیں، بھائیوں جیسا میرا ان سے رشتہ ہے، جنہوں نے ہمارا یہ شو آرگنائز کیا ہے، کر رہے ہیں سڈنی میں، تو ان سب لوگوں کا شکریہ سب سے پہلے تو، کہ میرے جو یہاں کے لوگ ہیں وہ بھی پاکستانی جو ہمارے ٹیلنٹڈ جو آرٹسٹ ہیں ان کو بھی سنیں، اور ہم پیسہ نہ بنائیں، پیسہ تو بن ہی جاتا ہے، مگر ہم لوگوں کو انٹرٹین کریں، کمیونٹی کو جوڑیں، بیٹھیں، لوگوں کو بلائیں، تو اس طرح سے پھر راستہ بنتا ہے آگے کے شوز کا، دوسرے آرٹسٹوں کا، ایک کامیاب شو کی وجہ سے۔ اگر ایک شو ناکام ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو وہ پھر آگے کے جو بہت سارے جو شوز ہوتے ہیں نا، ان کو روکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ان سب کا شکریہ، اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ہماری آواز آگے تک پہنچا رہے ہیں۔
آپ کے ابتدائی دور کے کئی گیت آج بھی شائقین میں مقبول ہیں، مگر میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک آپ کا ری ایمرج ہوا، یعنی ایک دوبارہ سے نیا سلیم جاوید لوگوں کو دیکھنے کو ملا، جو پرانی نسل کلچر کی طرف لوگوں کو موڑا ہے، آپ کے مقبول فوک یا گیت یا بھنگڑا گیت کی لوگوں میں ویسے ہی جوش و خروش پیدا کرتے ہیں۔ تو آپ کے کیریئر کے کون سے ایسے پہلے بڑے ہٹ گیت تھے جو آج؟
دیکھیے، پہلا تو میرا جو ڈیبیو البم تھا 1985 میں لانچ ہوا تھا، وہ لسن ٹو مائی وائس نام تھا اس کا، وہ البم، ڈیبیو البم پہ آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں، جیسے کوئی مووی آتی ہے کسی ایکٹر کی تو وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کہ اگر وہ ہٹ ہوتی ہے تو پھر اس کا کیریئر شروع ہو جاتا ہے، اگر وہ فلاپ ہوتی ہے تو اس کا کیریئر چلا جاتا ہے۔ یہاں انڈیا پاکستان میں یہی دیکھا گیا ہے، لکیلی کوئی اگر کسی کو دوسرا چانس مل جائے، تیسرا، تو وہ آ جائے، وہ الگ بات ہوتی ہے، مگر میرے ساتھ بڑا اچھا ہوا، اللہ کا شکر ہے کہ میری جو پہلی البم تھی اس میں میں نے ایکسپیریمنٹ کیے تھے کچھ۔ ایک تو ریمکس کا دور نہیں تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ریمکس، ایک پرانا گانا اس کو اٹھا کے اس کی شکل چینج کرنا، اس کا میوزک چینج کرنا، اور اس کو الگ اسٹائل میں گانا، تو اچھا مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا نام ایک زمانے میں آ کے ریمکس لوگوں پڑ جائے گا۔ ہم نے ایک نیا میوزک کوشش کی تھی جب وہ مارکیٹ میں آیا، اور یہی ہم نے بلوچی گانا ایک تھا میرا، لیلا او لیلا، جو ویسے تو بہت پرانا فوک ہے، وہ فیض محمد بلوچ صاحب کا، تو مجھے وہ میوزک بڑا لڑتا تھا ہمیشہ سے، میں بولتا تھا یار یہ کتنا اچھا گانا ہے، مگر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا نا، کیونکہ بلوچی زبان بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، مگر وہ میوزک اتنا اچھا تھا، وہ اس کو جھومنے کو دل چاہتا تھا، تو میں نے سوچا کہ اس گانے کو اگر ہم ماڈرن اسٹائل کے اندر فیمیل کا کورس کر کے اور اس کو اردو میں گایا جائے تو ایک نیا ایکسپیریمنٹ ہوگا، کیونکہ پنجابی گانے تو بنتے تھے فوک کے، بلوچی گانا کوئی بھی پاپ میں نہیں بنتا تھا، تو وہ پہلا پاکستان کا گانا تھا لیلا او لیلا، جو میری ڈیبیو البم میں تھا، میں نے گایا تھا اس کو، ہم نے پاپ اسٹائل لایا تھا، تو پھر ان کا نام آگے جا کے ایک دو سال میں ریمکس لوگ پکارنے لگے جی، تو میرے لکیلی وہ میرے حصے میں آ گیا کہ میں پائنیئر میں سے ہوں ریمکس سانگ کا، بھنگڑا پاکستان میں، लाने का मैं उसके अंदर आ गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
आपने 1985 का जिक्र किया, उस वक्त में और भी बहुत से आपके हम असर गुलकार पॉप स्टार्स थे जिनको हम आज नहीं देखते, वो गोशा नशीन हो चुके हैं या किसी और वजह से अब वो परफॉर्म नहीं कर रहे। तो मुसीकी के इस तवील सफर में यकीनन कई चैलेंजेस भी आए होंगे, तो एक फनकार के तौर पर सबसे मुश्किल मरहला कौन सा रहा और ये दोबारा से री एमर्ज होने का ये तजुर्बा करने में क्या चैलेंजेस रहे?
कोई भी नहीं चाहता कि मैं इतनी मेहनत से एक जगह पर आया हूँ और मैं वो बादशाह की सीट छोड़ दूँ। वक्त शोबिस का ऐसा जालिम है, उम्र ऐसी चीज एक है, एज फैक्टर जो आता है ना जिसे हम कहते हैं, वो आना ही आना है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी मेहनत से, अपने रख रखाव से, अपने तौर तरीकों से, अपनी कुर्बानियों से शोबिस में जो है बहुत सारी चमक धमक बहुत है। जो शो का नाम है ना शो, शोबिस, वो चमक बहुत है इसमें। तो कभी कहीं आदमी चमक के अंदर खो जाता है, उसको एहसास नहीं हो पाता। तो वो शोहरत और पैसे दो एक ऐसी चीज होती है, दो के किसी एक आदमी को एक भी चीज मिल जाए, ये पैसा ही मिल जाए, तो गरीब आदमी को पैसा मिल जाए तो वो फिर उसको काबू नहीं कर पाता। तो मेरे साथ अल्लाह का बड़ा करम रहा है कि मैं शुरू से नमाज से जोड़ा रहा हूँ। तो जो बहुत सारी ऐसी बुराइयां, बहुत सारी वो चीजें थी शोबिस की होती हैं, अल्लाह ने उससे मुझे बचा के रखा है। एक तो मेन तो ये फैक्टर है इसका, और फिर मैं काम करता रहा हूं। मैंने हर दौर में ना, मैंने बहुत तकलीफों के साथ ना ये हासिल की है ये जगह ना, तो मैं इसको इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकता। अब उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी है, नया म्यूजिक लेके आना है और अपने आप को भी ना वो दोबारा से ना नित नए स्टाइल में लाना है। जैसे अगर आप, एज तो मेरी बढ़ रही है, सबकी बढ़ती है फैक्टर के साथ साथ, मगर आप उसको अपने आप को ना ग्रूम करें थोड़ा सा, कि हमने देखा बड़े बड़े 70-70 साल के लोग इतने हसीन लगते हैं, तो वो अपने आप को ख्याल रखते हैं। मैं ग्रूम करता हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, जॉगिंग करता हूँ, वॉक करता हूँ, खाने पीने का कंट्रोल करता हूँ, ख्याल करता हूँ। फिर म्यूजिक के अंदर ना मैं इन रहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि बस मेरी असल जो पावर है ना वो है स्टेज की, जो इंशाल्लाह ताला कल लोग आएंगे हमारे शो पे जो 30 को हो रहा है यहाँ पे सिडनी में, तो फिर आप वो देखेंगे स्टेज। लोग क्योंकि लोग हिट तो हो जाते हैं, मशहूर हो जाते हैं, उनका सीन ही होता है कि वो फिर गा नहीं सकते लाइव। वाके लाइव गाना एक होता है, तो मैंने शुरू लाइव शो से ही किया था, बाद में कैसेट्स आई, बाद में फिर टीवी पर आया। तो कल मैं इंशाल्लाह ताला बड़ी तैयारी से, हमारी तैयारी बहुत है, बड़ी बात नहीं करना चाहिए, हम अपना बेस्ट देंगे इंशाल्लाह ताला। मैं क्योंकि बहुत सालों बाद आया हूँ, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड हम करते रहते हैं शोज, हर साल करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आया हूँ, मैं आया था 89 के अंदर आया था, 1989 में, तो मैं 27 सालों के बाद सिडनी वापस आया हूँ। इंशाल्लाह ताला बड़ी यादें हम भी लेके जाएंगे और यहाँ हम यादें अपनी छोड़ के भी जाएंगे इंशाल्लाह ताला।
27 सालों में आपको ऑस्ट्रेलिया या सिडनी कितना मुख्तलिफ लगा पहले के मुकाबले में, और कौन सी चीज है ऑस्ट्रेलिया की ऐसी जिसने आपको हमेशा से इंस्पायर किया या आपको मुतासिर किया?
एक तो ना पीसफुल माहौल है यहाँ का ना, बहुत अफरा तफरी नहीं, भगदड़ नहीं, लोग बहुत अच्छे हैं, डिसेंट लोग हैं, कहीं कुछ ऐसा नहीं होता कि लोग रिएक्ट कर रहे हैं किसी भी बात पे ना। तो और फिर यहाँ का जो सिस्टम है, जो यहाँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट का सिस्टम है, उसने बड़ा कंट्रोल किया और बड़ी अपने लोगों के लिए ना बड़ी वो ख्याल करते हैं। जैसे हम एयरपोर्ट से आ रहे थे, किसी भी कंट्री के लिए बड़ी बात होती है कि उसके हुक्मरान हैं उसका ख्याल करें, तो वो हमारी कस्टम यानी हमारा इमिग्रेशन से ज्यादा हमारा कस्टम पे उन्होंने फोकस किया हुआ था कि कोई हम ऐसी चीज तो नहीं ला रहे जो यहाँ के लोगों को बीमार कर दे, लोगों के लिए तकलीफ का बाइस बने। तो मुझे ये चीज इतनी अट्रैक्ट की कि यार ये कैसे लोग हैं कि ये अपनी कौम के लिए ऐसा सोच रहे हैं। तो जब कौम के लिए सोचते हैं तो कौम भी फिर अच्छी निकली, अच्छी होती है। जैसे वो कहते ना हुक्मरान वैसे ही अवाम ऐसी हुक्मरान, तो जब हुक्मरान यहाँ अच्छे हैं, अच्छा सेटअप किया हुआ है और खूबसूरती पहले से ज्यादा बढ़ गई ऑस्ट्रेलिया की।
और आखिर मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा, क्योंकि आपने जैसे मैंने शुरू में आरूप में बताया कि कई जनरेशंस को मुतासिर किया है, तो आपने बहुत से वो दौर देखे हैं जब लोगों के प्लेटफॉर्म मुख्तलिफ होते थे। अब एक नया प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया है जो लोगों की फिंगर टिप्स के ऊपर मौजूद है, जहां लोग फौरी रद्द अमल देते हैं। तो सोशल मीडिया के इस दौर में बहुत से लोगों को तंकीद और ट्रॉलिंग का सामना भी करना पड़ता है। आप इस तरह के मनफी तबसरों या तनाजात को किस अंदाज में हैंडल करते हैं?
अच्छा, एक तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए मनफी जो है ना बड़ा कम आता है, मगर कोई लिख भी देता है तो मैं उसको कोई ऐसी बात नहीं करता कि ठीक है वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो यही समझता है। बहुत सारे लोग अपनी नफरत का इजहार कर देते हैं, शोबिस के अंदर जो होता है ना जेलिसी का चक्कर बहुत है ज्यादा, तो ऑडियंस से ज्यादा जो फील्ड के जो लोग होते हैं ना वो इस चीज को करते हैं ज्यादा, तो हमें अंदाजा हो जाता है, मगर मैं उसका रिएक्ट नहीं करता उस बात पे। मैं ये देखता हूँ कि अगर मुझे 1 लाख लोग पसंद कर रहे हैं, अगर 2 लोगों ने 1 लोगों ने नापसंदगी का इजहार किया तो मैं उसका रिएक्ट नहीं करता, उसको बोलता हूँ ठीक है, और फिर मैं उस पर गौर करता हूँ कि यार ये जो बात कर रहा है कहीं इसमें ये खामी मेरे में है तो नहीं। और ऐसा बेशुमार मरतबा हुआ है कि मुझे जो मैं सोच रहा होता हूँ कि यार ये मैं गलत करता हूँ और वो सामने वाले ने भी बात की, तो फिर मैं अपने थोड़ा सा इम्प्रूव करता हूँ उस चीज को तो बेहतर हो जाता है। और शोबिस, ये एक आपने जो सोशल मीडिया का भी कहा ना, मैं इससे थोड़ा सा दूर था, अब कुछ अरसे से मैं इससे जुड़ गया हूँ, और जुड़ा हूँ तो मुझे इसका फायदा बेनिफिट ये मिल रहा है कि हम एक टीवी तक थे, महदूद थे, लाइव स्टेज परफॉर्मेंस तक थे, एल्बम तक थे, तो मगर अब मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया जब से आया हूँ तो बेशुमार लोग मुझसे ऐसे जुड़ गए हैं, जो नए बच्चे जुड़ गए हैं उनको पता चला कि यार ये म्यूजिक तो इन्होंने गाया था जो अब वो जाके अली जफर गा रहे हैं, दूसरे लोग गा रहे हैं, ये तो ये 85 में गा चुके हैं लैला लैला जैसे अली जफर ने गाया, तो लोगों को बच्चों को पता चल रहा है यार ये तो इनका गाना था, तो उससे मुझे फायदा होता है। जब वो ओरिजिनल चीज होती है ना वो बच्चा उससे अट्रैक्ट करता है कि यार असल आदमी तो ये है, तो मुझे उसका फायदा हो गया, मुझे अली जफर के गाने से नुकसान नहीं हुआ, पहले मुझे थोड़ा सा वो लगा था, मगर उससे मुझे फायदा हो रहा है कि मैं अब जब सोशल मीडिया अब मेरा बढ़ता जा रहा, अभी हम बहुत सारी चीजें बहुत सारे सॉन्ग्स हमारे आने वाले हैं जो लोगों को हैरान कर देंगे, ऐसी साउंड ऐसी म्यूजिक लोगों को जो हैरान कर देगी कि लोग बोलेंगे यार इस उम्र में आके इस इतनी अरसा गुजारने के बाद एक आदमी ये भी कर सकता है, इस तरह का होने वाला है, अभी रिकॉर्ड हो गया, म्यूजिक आ गया, ऑडियो रिकॉर्ड हो गया, सिर्फ वीडियो पे काम हो रहा है।
माशाल्लाह, आपने जो सब फनी सफर तय किया है, मेरे ख्याल में नौजवान नस्ल के लिए वो बड़ी एक मशाल राह है। जैसा कि आपने बताया कि आपने अपनी जो रवायात हैं उनको भी नहीं छोड़ा, और साथ साथ में आपने नई नस्ल के लिए भी बहुत कुछ नया बनाया और अभी भी बना रहे हैं।
मेरा एक ऐसा गाना है, वैसे तो गाने मेरे तकरीबन तकरीबन बहुत सारे लोगों को पसंद है, बहुत सारे गाने हिट हुए हैं, मगर
बहुत
कोई गाना एक ऐसा आता है कि जो आपकी शनाख्त बन जाता है, और ऐसी शनाख्त बन गया कि 2 से 3 मरतबा उस गाने को इंडिया में भी कॉपी किया गया है, मेरी जुगनी को, जुगनी का जो म्यूजिक है वो इंडिया में पूरा कॉपी किया गया है, वो एक गाना था ये खबर छपा दो अखबार में, अब वो दोबारा से रीडू किया उन्होंने उसी गाने को, कोई 25-30 सालों के बाद ने गाया उसको ना, सिडनी की दोस्तों की फैमिलीज की मोहब्बत के लिए 2 लाइनें, ओए अली पाकी मामदा में विरद करा दम दम हुणवे तजल्ले नूर दे जू कतरे शबनम, मैं पढ़ी नमाजा इश्क दी दूर होवे सब गम ते मैं गावा जुगनी तेरी, मैं गावा जुगनी तेरी, मैं गावा जुगनी सजना दी अल्लाह बिस्मिल्ला तेरी जुगनी, हाय सोनिया तेरी जुगनी, मौला वाले आ तेरी जुगनी। थैंक
आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
यू, थैंक यू।
अभी आप मारूफ पाकिस्तानी गुलोकार सलीम जावेद से की गई बातचीत समाप्त फरमा रहे थे। मैं हूं रिहान अलवी और आप हैं SBS उर्दू के साथ।
SBS South Asian. Keep up to date with what's happening in your community.
Thank you for tuning in.
Assalamu alaikum Australia. मैं हूं फवाद खान और आप सुन रहे हैं SBS Radio.
मैं हूं रिहान अलवी और आप हैं SBS उर्दू के साथ।
आज कुछ खास है।
SBS South Asian, your news from here and hits from home.
इस तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं? Apple Podcast, Google Podcast या Spotify या जहाँ से भी आप podcast सुन सकें।